आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
सोचिए, अगर आपकी खाने की टेबल पर 200 से अधिक तरह के पकवान हों। कुछ ऐसा ही होता था जब राजा, महाराजा, नवाब और पुराने जमाने के रईस लोग खाना खाने बैठते थे। धीरे धीरे रियासत खत्म हो गई और वो सैकड़ों तरह के पकवान भी खत्म हो गए। अब तो फास्ट फूड का जमाना है, लेकिन सोचिए अगर आपको फिर वही पुराने जमाने के व्यंजन खाने को मिले तो कैसा लगेगा। कुछ ऐसा ही कर रही हैं रामपुर की फूड हिस्टोरियन डॉक्टर तराना हुसैन खान। रामपुर रियासत में नवाबी दौर के सैकड़ों व्यंजनों को उन्होंने पुनर्जीवित किया है। फिर से पुराने रसोइये और खानसामों की मदद लेकर उन्होंने इन व्यंजनों को बनाया है। इन शाही व्यंजनों को जब लोगों के सामने इन्होंने प्रस्तुत किया तो सभी ने कहा, अरे वाह, ऐसा भी खाना हो सकता है। कैसे किया ये सब डॉक्टर तराना ने, वे बताते।
नमस्कार, सलाम एंड गुड इवनिंग। मेरा नाम डॉक्टर तराना हुसैन खान है। मैं एक फूड हिस्टोरियन और राइटर हूँ। मैं इस रॉयल फूड्स की तरफ से मेरा रुझान शुरू में तो नहीं था, बल्कि खाने की तरफ भी नहीं था। मैं तो रिसर्च कर रही थी किसी और बुक के लिए, लेकिन इत्तेफाक से मेरा मैं रामपुर में रहती हूँ और वहाँ पे एक बहुत मशहूर लाइब्रेरी है, रामपुर रजा लाइब्रेरी, जो नवाबों ने बनाया है। उसमें बहुत बड़ा ज़खीरा है मैनुस्क्रिप्ट का। तो कुछ कुकबुक मैनुस्क्रिप्ट थी पर्शियन में 19वीं सदी की, जो कि मुझे इत्तेफाक से मिली, और उनको पढ़ने के बाद मुझे पर्शियन फारसी तो नहीं आती थी, लेकिन मैंने कोशिश करी कि एटलीस्ट उनका नाम पढ़ूं जो डिशेस के नाम थे। तो पता मुझे चला कि तकरीबन 300 रेसिपीज़ हैं पुलाव और कोरमे की, और मैं बहुत ही हैरान हुई, क्योंकि हम लोगों के अब रामपुर में, जबकि वो नवाबी ज़माने का एक स्टेट था पहले, लेकिन अब हमारे यहाँ रामपुर में बहुत ही बेसिक मतलब जैसे एक पुलाव है, जैसे नॉर्मल होता है पुलाव, कोरमा, कबाब, कुछ सब्जियाँ, कुछ मीठे, कुछ इतना नहीं था कि 300 कहाँ से डिशेस थी, कब बनती थी और अब ये डिशेस कहाँ गई। तो ये जो सवाल था, इसने मेरे अंदर ये रुझान पैदा करा कि मैं इसके ऊपर रिसर्च करूँ। और मैंने इस सिलसिले में कई आर्टिकल्स लिखे हैं, और मेरी किताब है देख टू दस्तरखान, किस्साज एंड रेसिपीज फ्रॉम रामपुर, और एक वॉल्यूम फॉरगॉटन फूड्स पे है जो कि मैंने को एडिट करा है। तो यहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ और मैंने फिर ट्रांसलेशन शुरू करा इन रेसिपीज़ का, और कोशिश करी, अपनी सी कोशिश करी कि इनको बनाने की कोशिश करूँ, जो कि बहुत ही मुश्किल था। खैर, कुछ वहाँ के रामपुर के खानसामों की मदद से मैंने कोशिश करना शुरू करी। कुछ बहुत ही ख़राब चीज़ें भी बनी, कुछ समझ में नहीं आता था जिस तरीके से वो रेसिपीज़ लिखी गई थी। लेकिन इस बीच मेरी मुलाकात प्रोफेसर शिवान लैम्बर्ट होली से हुई ऑनलाइन। वो भी एक आर्टिकल मैंने लिखा था अपनी कोशिशों के बारे में उसके ज़रिए, और उनसे बातचीत करते हुए फिर ये प्रोजेक्ट हमारा शुरू हुआ, जिसका नाम था फॉरगॉटन फूड्स, जो कि आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज रिसर्च काउंसिल से फंडेड था, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड के अंडर में मैंने काम करा 2019 से 2024 तक। और इसमें मैंने रिसर्च करी, डॉक्यूमेंटिंग, ओरल हिस्ट्री को रिकॉर्ड करना, और ऑफकोर्स राइटिंग एज वेल एज, इसके अलावा हम लोगों ने लगभग 40 रेसिपीज ऐसी थी जो कि हमने फिर से रिवाइव करी रामपुर के खानसामों की मदद से, और इनको प्रेजेंट करा। तो बहुत ही संक्षिप्त में ये मेरा सफ़र था।
वैसे तो सैकड़ों तरह के व्यंजन थे, लेकिन डॉक्टर तराना हुसैन खान ने अब तक 40 से अधिक शाही व्यंजनों को पुनर्जीवित किया है। ये सब व्यंजन उन्होंने पुराने कुक उनके शिष्यों की मदद से बनाए। पर्शियन में लिखी हुई स्क्रिप्ट जिसमें इनकी रेसिपी लिखी थी उसको एक बार इन्होंने फिर से पुनर्जीवित किया है।
रामपुर में जब रियासत थी, जाहिर है उस वक्त स्पॉन्सरशिप थी नवाबों की, बहुत ही रईस नवाब थे, और उस जमाने में 200 डिशेस नवाब के टेबल पे होती थी। 1949 में रामपुर का मर्जर हुआ इनटू द इंडियन यूनियन आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद। उसके बाद एक इकोनॉमिक निग्लेक्ट हुआ, और स्पॉन्सरशिप नहीं होने की वजह से जितने जो खानसामा थे वो भी नवाबों ने अपने पुराने खानसामा उनको निकालना पड़ा, जाहिर है उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं रहे। ये खानसामा जो थे इनको लगा कि भई हम किस ये खानसामा गिरी, जो कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जो कि हम अपने बच्चों को सिखाएं, क्योंकि ये रेसिपीज जो थी वो अप्रेंटिसशिप या जिसे आप शागिर्दी कहते हैं उसके थ्रू ही एक खानसामा से दूसरे खानसामा को सिखाई जाती थी। जब वो सिलसिला ख़त्म हो गया तो ये खानसामा जो थे इन्होंने भी अपने जो भी उनके राज थे, जो भी उनके रेसिपीज थी, वो उन्होंने किसी को नहीं बताई और अपने साथ ये राज लेके चले गए। बहुत कई सालों तक, 1970s तक तो ये डिशेज धीरे धीरे, कुछ डिशेज एटलीस्ट 1970s तक बनती रही जिनका हमें जिक्र मिलता है कुछ मेमोर्स में, लेकिन उसके बाद का जो नेक्स्ट जनरेशन आया उनको ये रेसिपीज पता ही नहीं थी। और इस तरह धीरे धीरे, भाई 70s से भी तो 50 साल हो गए, तो इन 50 सालों में ये सारी रेसिपीज बिल्कुल ही गायब हो गई, और सिर्फ इनका जो भी थोड़ा बहुत जो सेकेंडरी सोर्सेज या मेमोर्स में इनका जिक्र या कुछ पुराने लोगों की जबान से इनके बारे में हमने सुना था। तो जब मैंने इंटरव्यूज करना शुरू करे तब मुझे एहसास हुआ कि कितना बड़ा खजाना हमारा खो गया है, और अब वो पुराने खानसामा नहीं है, लेकिन कुछ उनके शागिर्द थे जिनके साथ हमने काम किया, जिन्होंने कुछ अपने उस्तादों से सीखा था, मगर वही क्योंकि इतने रिसोर्सेज और लोगों के पास भी नहीं थे कि वो इन खानसामाओं को रख पाते या उनकी रेसिपीज ले पाते। तो इस तरह धीरे धीरे करके ये सारा खजाना जो एक तरह से कल्नरी खजाना था वो धीरे धीरे गायब, बिल्कुल ख़त्म हो गया। इस तरह से कि रामपुर का जो कुजीन है वो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी कुजीन बन गया है, जिसका कोई डिस्टिंक्शन नहीं था और बाकी कुजीन से। आप कह नहीं सकते थे कि भाई रामपुर कुजीन कोई ख़ास चीज़ है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं था क्योंकि इसके जो इम्पोर्टेंट डिशेस थी वही गायब हो चुकी थी।
ऐसा नहीं है कि बस पुरानी रेसिपी उठाई और व्यंजन बनाना शुरू, बहुत सी डिशेस तो वो कई बार कोशिश के बाद भी नहीं बना पाई, जो बन गई उनको दिल्ली और भोपाल में इन्होंने लोगों के सामने पेश किया, लोग भी हतप्रभ रह गए। ये काम बहुत ही सब्र और मेहनत का था, लेकिन डॉक्टर तराना ने इसको बखूबी अंजाम दिया।
जी, तो ये जब हमने खानसामाओं के ये पुराने ट्रांसलेशन लेके और खानसामाओं के साथ इनके ऊपर मैंने काम किया, ऑफकोर्स मेरी फंडिंग थी फॉरगॉटन फूड्स प्रोजेक्ट से, फंडिंग थी नहीं तो इतना बड़ा काम करना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं था, इंडिविजुअल लेवल पे तो आप कर ही नहीं सकते थे। तो जब ये एक्सपेरिमेंटल कुकिंग हमने शुरू करी फिर इनको पूरा नोट किया, तो लगभग ये 40 रेसिपीज ऐसी थी, 40-42 रेसिपीज ऐसी थी जो कि हमें लगा कि हाँ ये खानसामा सीख भी गए हैं, कुछ उनकी भी इनपुट्स थी और मिलजुल के हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने इसको पहले तो IIC दिल्ली में प्रेजेंट करा और वहाँ पे बहुत सक्सेसफुल हुआ। मतलब जिससे भी हमने बात करी, रॉयल फैमिली के लोग भी आए वहाँ पे और उन्होंने भी ट्राई आउट करा, और जिन लोगों ने वहाँ पे खाया ये सारी रेसिपीज तो उनको ये जायका बिल्कुल ही अलग लगा, उन्होंने कभी ऐसे खानों का नाम भी नहीं सुना था, तो बहुत सक्सेसफुल था। फिर हमने 4-day फेस्टिवल करा, रिवायत रामपुर करके फेस्टिवल करा जहानुमा पैलेस होटल भोपाल में, और वहाँ पे भी बहुत सक्सेसफुल हुआ, लगभग 2000 के करीब लोग जो थे वो इस 4 दिन के फेस्टिवल में आए, कुछ लोग तो 2-2 बार आए, और हर दिन हमने कुछ नया प्रेजेंट करने की कोशिश करी, तो हम भी अपनी अपने तरफ से इनोवेट और पंचामाओं के साथ बैठ के इनोवेट कर रहे थे, उनकी रिक्वायरमेंट जो रेस्टोरेंट ओनर की रिक्वायरमेंट थी उसको लेकर, और उनको भी हमने अपनी रेसिपीज सिखाई, जहानुमा पैलेस होटल के जो खानसामा थे उनको भी हमने सिखाई, क्योंकि हमारा एम है कि इसको फिर से हम रिवाइव करें, और इसकी कोशिश जो है ये जारी है। अभी हाल ही में मैं एक कुक बुक पे काम कर रही हूँ जो कि ब्लूम्सबेरी पब्लिश करेगी, जिसमें ये 40 रेसिपीज मैंने अपने पीआई प्रोफेसर शिवान लैम्बर्ट हर्ली के साथ मिलके ये रेसिपी बुक जो है ये मैं पब्लिश करूंगी, और मुझे उम्मीद है क्योंकि ये इतनी आसान हमने बना दी है कि एक ऑर्डिनरी होम कुक जो है वो इन्हें बना सके। इसमें इंग्रेडिएंट्स, इसके मेथड सिंप्लीफाई इतने कर दिए हैं कि आप घर में आसानी से बना सकें और इसका जायका ले सकें। कुछ रेसिपीज ऐसी हैं जो कि हम बिल्कुल भी नहीं बना पाए, जैसे एक स्वीट होती थी दरे बहेश, जिसका हमने जिक्र बहुत सुना, लेकिन उसको हम कभी नहीं बना पाए, जबकि उसके इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल थे, लेकिन उसकी वे ऑफ मेकिंग जो है, स्किल जो है, वो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। तो डिजास्टर्स तो होते हैं, मगर हम ये कह सकते हैं कि लगभग 40 ये रेसिपीज, कम अज कम ये 40 रेसिपीज हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं अब एक कुक बुक की शक्ल में।
पुराना गौरव सिर्फ इमारतें नहीं होती हैं, खान पान भी संस्कृति का हिस्सा है, और डॉक्टर तराना उसको सहेज रही हैं। लखनऊ से फैसल फरीद।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।